नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइना ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, अबाउट फेस द एसेंशियल्स ऑफ इंट्रैक्शन डिजाइन। एलन कूपर की इंट्रैक्शन डिजाइन पर प्रभावशाली संदर्भ पुस्तक है। इसका चौथा संस्करण मोबाइल उपकरणों और टैबलेटों के व्यापक उपयोग के दौर को ध्यान में रखकर संशोधित किया गया है। पुस्तक का विषय केवल स्क्रीन को आकर्षक बनाना नहीं, बल्कि ऐसे डिजिटल उत्पादों का व्यवहार तय करना है जो लोगों के उद्देश्यों, क्षमताओं और काम करने के वास्तविक संदर्भ से मेल खाए। यह सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, वेब सेवाओं और मोबाइल ऐपों के डिजाइन को एक व्यवस्थित पेशेवर अनुशासन के रूप में देखती है। कूपर के प्रमुख विचारों में गोल डायरेक्टेड डिजाइन, पर्सोना, परिदृश्य और इंटरमीडिएट उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन शामिल हैं। पुस्तक शोध से लेकर उत्पाद की परिभाषा, ढांचे और इंटरफेस की बारीकियों तक एक व्यापक प्रक्रिया प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य डिजाइनरों, डेवलपरों और उत्पाद निर्णय लेने वालों को यह समझाना है कि अच्छी उपयोगिता केवल फीचरों की सूची से नहीं आती, बल्कि उत्पाद के स्पष्ट, भरोसेमंद और मानवीय व्यवहार से बनती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, लक्ष्य केंद्रित डिजाइन से फीचर सूची को उपयोगकर्ता के काम में बदलना। पुस्तक का केंद्रीय ढांचा गोल डायरेक्टेड डिजाइन है। इसका आरंभ इस प्रश्न से होता है कि व्यक्ति उत्पाद के भीतर कौन सा बटन दबाएगा, इससे नहीं बल्कि वह अपने व्यापक काम में क्या हासिल करना चाहता है। फीचर केंद्रित विकास में टीम प्रायः प्रतिस्पर्धियों की सूची देखकर नई क्षमताएं जोड़ती जाती है। परिणाम स्वरूप उत्पाद शक्तिशाली तो दिख सकता है, पर उसका व्यवहार बिखरा हुआ और सीखने में कठिन हो जाता है। कूपर का तरीका उपयोगकर्ता शोध के माध्यम से व्यवहार के पैटर्न समझने, प्रतिनिधि पर्सोना बनाने, उनके लक्ष्य स्पष्ट करने और उन लक्ष्यों के अनुरूप उत्पाद को परिभाषित करने पर जोर देता है। इस क्रम का व्यावहारिक महत्व यह है कि डिजाइन संबंधी विवादों को व्यक्तिगत पसंद से हटाकर साक्ष्य और उपयोगकर्ता के उद्देश्य पर लाया जा सकता है। परिदृश्य बताते हैं कि कोई पर्सोना किसी स्थिति में उत्पाद से कैसे संवाद करेगा, इसलिए वे केवल उपयोग के उदाहरण नहीं बल्कि आवश्यक जानकारी, क्रम, प्रतिक्रिया और प्राथमिकताओं की जांच का माध्यम बनते हैं। पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि शोध अपने आप में अंतिम उत्तर नहीं है। डिजाइनर को शोध से मिली समझ का उपयोग कर सुसंगत उत्पाद व्यवहार गढ़ना पड़ता है। यही बात इसे केवल उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया संग्रह करने वाली प्रक्रिया से अलग बनाती है। दूसरा, अब बन नाती है। पर्सोना और परिदृश्य के माध्यम से अस्पष्ट उपयोगकर्ता की जगह ठोस निर्णय आधार। अबाउट फेस में पर्सोना को काल्पनिक औसत ग्राहक या बाजार खंड नहीं माना गया है। वह शोध से निकला ऐसा विश्वसनीय प्रतिनिधि है जिसके लक्ष्य, व्यवहार, ज्ञान और परिस्थितियां डिजाइन निर्णयों को दिशा देते हैं। जब टीम केवल सबके लिए डिजाइन करने की कोशिश करती है तो इंटरफेस में विरोधी जरूरतें भर जाती है। पर्सोना इस समस्या को प्राथमिक उपयोगकर्ता की जरूरत तय करके सीमित करता है। इसका अर्थ किसी अन्य उपयोगकर्ता को अनदेखा करना नहीं, बल्कि यह पहचानना है कि किन जरूरतों को मुख्य प्रवाह में रखा जाए और किन्हें अलग उपाय चाहिए। परिदृश्य इस प्रतिनिधि को समय, स्थान और कार्य के संदर्भ में रखता है। इनके सहारे टीम जांच सकती है कि क्या शुरुआती चरण स्पष्ट है, क्या जरूरी सूचना सही समय पर मिलती है और क्या उत्पाद काम पूरा होने तक अनावश्यक बाधाएं पैदा करता है। पुस्तक के अनुसार पर्सोना तभी उपयोगी है जब वह डिजाइन भाषा का साझा आधार बने। केवल सुंदर प्रोफाइल, उम्र या मनगढ़ंत रुचियां पर्याप्त नहीं है, उसे वास्तविक व्यवहार और लक्ष्य से जुड़ना चाहिए। यह दृष्टि उत्पाद प्रबंधक, शोधकर्ता और इंजीनियर के बीच संवाद को भी बेहतर करती है, क्योंकि चर्चा अमूर्त उपयोगकर्ता से हटकर एक पहचाने हुए उपयोग संदर्भ पर केंद्रित हो जाती है। तीसरा, इंटरमीडिएट उपयोगकर्ता के लिए संतुलित सरलता और दीर्घकालिक दक्षता। कूपर का एक महत्वपूर्ण तर्क है कि अधिकांश डिजिटल उत्पादों को मुख्यतः इंटरमीडिएट उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन करना चाहिए। शुरुआती उपयोगकर्ता कम जानते हैं और उन्हें मार्गदर्शन चाहिए, जबकि विशेषज्ञ तेज नियंत्रण और शॉर्टकट चाहते हैं। पर वास्तविक दुनिया में बहुत से लोग किसी उत्पाद को सीखकर नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, मगर उसके विशेषज्ञ नहीं बनते। यदि डिजाइन केवल शुरुआती व्यक्ति के लिए हो तो बार बार सहायता, पुष्टिकरण और अत्यधिक सरल किए गए विकल्प नियमित उपयोग को धीमा करते हैं। यदि वह केवल विशेषज्ञ के लिए हो तो आरंभिक सीखने की लागत इतनी बढ़ जाती है कि बहुत लोग उत्पाद छोड़ देते हैं। इंटरमीडिएट पर केंद्रित डिजाइन आरंभ में समझने योग्य रास्ता देता है और अनुभव बढ़ने पर दक्षता के अवसर उपलब्ध कराता है। यह सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि कई ऐप और सेवाएं रोजमर्रा के उपयोग में आती है, पर उपयोगकर्ता उन्हें पेशेवर औजार की तरह नहीं सीखते। पुस्तक का व्यापक संकेत यह है कि सरलता का अर्थ नियंत्रण हटाना नहीं है। सही सरलता तब बनती है जब प्रणाली उपयोगकर्ता की वर्तमान स्थिति समझने में मदद करे। सामान्य कामों को प्राथमिकता दे और उन्नत क्षमता को ऐसे रखे कि वह जरूरत पड़ने पर मिले, पर मुख्य प्रवाह को बोझिल न बनाए। चौथा, उत्पाद का व्यवहार। सूचना संरचना और इंटरफेस को अलग स्तरों पर समझना पुस्तक इंटरैक्शन डिजाइन को केवल दृश्य शैली, रंग या स्क्रीन लेआउट तक सीमित नहीं करती। उसका जोर उत्पाद के व्यवहार पर है, अर्थात वह उपयोगकर्ता की क्रिया पर क्या प्रतिक्रिया देता है, जानकारी कैसे प्रस्तुत करता है, अवस्थाओं के बीच कैसे बदलता है और गलती या अनिश्चितता में क्या सहायता देता है। इस नजरिए से इंटरफेस का मूल्यांकन उसके सजावटी रूप से पहले उसके संवाद की गुणवत्ता पर होता है। पुस्तक डिजाइन कार्य को उत्पाद की परिभाषा, ढांचे और विस्तृत इंटरफेस निर्णयों जैसे स्तरों में सोचने के लिए प्रेरित करती है। पहले स्तर पर तय होता है कि उत्पाद किस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। ढांचे के स्तर पर कार्यों, नेविगेशन और सूचना के संबंध स्थापित होते हैं। फिर नियंत्रणों, संदेशों और दृश्य प्रस्तुति के विस्तृत निर्णय आते हैं। यह क्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि गलत उत्पाद अवधारणा को सुंदर स्क्रीन ठीक नहीं कर सकती। साथ ही बहुत जल्दी सूक्ष्म स्क्रीन विवरण में उतरने से टीम मूल कार्यप्रवाह की समस्याएं खो सकती है। अच्छे व्यवहार का एक पहलू उपयोगकर्ता का नियंत्रण और भरोसा भी है। प्रणाली को अपनी स्थिति, परिणाम और उपलब्ध विकल्प समझने योग्य ढंग से बताने चाहिए। उपयोगकर्ता को यह अनुमान हो सके कि अगली क्रिया का क्या असर होगा। यह सिद्धांत डेस्कटॉप, वेब और मोबाइल सभी माध्यमों में लागू होता है। अंत में, मोबाइल युग में संदर्भ, प्रत्यक्ष हेरफेर और प्लेटफॉर्म सीमाओं का महत्व, चौथा संस्करण स्मार्टफोन और टैबलेट की ओर हुए बदलाव को शामिल करता है। इसलिए यह अलग स्क्रीन आकारों और स्पर्श आधारित संवाद के प्रभाव पर ध्यान देता है। मोबाइल डिजाइन में केवल डेस्कटॉप स्क्रीन को छोटा कर देना पर्याप्त नहीं है। उपयोगकर्ता चलते फिरते हो सकता है, उसका ध्यान बंटा हो सकता है, नेटवर्क सीमित हो सकता है और स्पर्श इनपुट की सटीकता माउस से भिन्न होती है। ऐसे संदर्भ में कार्यों की प्राथमिकता, जानकारी की मात्रा, प्रतिक्रिया की स्पष्टता और त्रुटि से उबरने के उपाय अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पुस्तक के सिद्धांत माध्यम बदलने पर भी उपयोगी रहते हैं, क्योंकि पर्सोना और परिदृश्य यह पूछने का आधार देते हैं कि व्यक्ति इस उपकरण पर इस क्षण क्या करना चाहता है। प्रत्यक्ष हेरफेर, स्पष्ट प्रतिक्रिया और उचित नियंत्रण आकार जैसे निर्णय तभी सार्थक बनते हैं जब वे उस लक्ष्य और संदर्भ की सेवा करें। यह संस्करण प्लेटफॉर्म परंपराओं का सम्मान करने की जरूरत भी रेखांकित करता है। परिचित व्यवहार उपयोगकर्ता की सीखने की लागत घटाता है, जबकि हर उत्पाद में अलग नियम बनाने से भ्रम बढ़ता है। फिर भी पुस्तक नकल को समाधान नहीं मानती। डिजाइनर को उपलब्ध तकनीकी सीमाओं, उपकरण की क्षमताओं और उपयोगकर्ता की प्राथमिक गतिविधि के बीच विवेकपूर्ण संतुलन बनाना होता है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन इंटरैक्शन डिजाइनरों, यूएक्स शोधकर्ताओं, उत्पाद प्रबंधकों और सॉफ्टवेयर डेवलपरों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो डिजिटल उत्पाद के निर्णयों को केवल राय, ट्रेंड या फीचर अनुरोधों के आधार पर नहीं लेना चाहते। नए पेशेवरों को इससे उपयोगकर्ता केंद्रित उत्पाद परिभाषा की मजबूत शब्दावली और प्रक्रिया मिलती है। अनुभवी पाठकों के लिए इसका लाभ बुनियादी सिद्धांतों की पुनर्समीक्षा में है, खासकर तब जब जटिल उत्पाद में अलग अलग टीमों की प्राथमिकताएं टकरा रही हों। इसकी व्यावहारिक उपयोगिता पर्सोना, परिदृश्य और लक्ष्य केंद्रित सोच को डिजाइन चर्चा में लागू करने में है। पाठक यह समझ सकता है कि शोध को डिजाइन दिशा में कैसे बदला जाए, प्राथमिक उपयोगकर्ता कैसे चुना जाए और इंटरफेस की सूक्ष्मताओं से पहले व्यवहार व ढांचे पर क्यों काम किया जाए। समान पुस्तकों की तुलना में अबाउट फेस की विशिष्टता इसका व्यापक विधि केंद्रित दृष्टिकोण है। बहुत सी उपयोगिता पुस्तकें नियमों, चेकलिस्टों या दृश्य पैटर्नों पर केंद्रित रहती है। कूपर की पुस्तक उनसे पहले का प्रश्न उठाती है, उत्पाद को किसके लिए, किस लक्ष्य के लिए और किस व्यवहार के साथ बनाया जा रहा है। इसका आकार और शब्दावली कुछ पाठकों को भारी लग सकती है, इसलिए इसे त्वरित नियम पुस्तिका की तरह पढ़ना उचित नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति डिजिटल अनुभवों के पीछे की तर्क प्रणाली समझना चाहता है, उसके लिए यह क्षेत्र की आधारभूत और अब भी उपयोगी कृति है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं एलन कूपर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।